आप अपने मन में कोई अपराध बोध मत रखिएगा, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहीं। जैसे हालात बने हैं, हमें आज नहीं तो कल कंपनी बेचनी ही पड़ती। हमें तो खुशी है जो कंपनी उनके हाथों में जा रही है जिनका हक है इस पर, तो निसंकोच चलकर अपना पद संभालिए। आरवी उनकी बात नहीं टाल सकी और भारी कदमों से उनके पीछे चली गई। अमरजीत जी उसको अपने कैबिन में लेकर चले गए, जो ऑफिस का सबसे बड़ा आलीशान और शानदार कैबिन था। उसके बैक साइड के ग्लास वॉल से समुद्र दिखता था। शान ने आरवी को अमरजीत जी की चेयर पर बिठा दिया और पीछे से उसको अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जान, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? आरवी ने उसकी बाहों को हटा दिया पर बोली कुछ नहीं, तो शान ने कैबिन में नजरें घुमाते हुए कहा, चलो ये घर पर आराम से बताना, अभी अपने कैबिन को देखो। वैसे तो इंटीरियर ठीक ठाक ही है, पर अगर तुम्हें कुछ बदलवाना हो तो हम तुम्हारा कैबिन रेनोवेट करवा देंगे। आरवी अब भी खामोश रही। कैबिन को देखते हुए शान की नज़र सामने खड़े अमरजीत जी और अर्जुन पर पड़ी और उसने भौं उचकाते हुए बोला, आप दोनों अभी तक यहीं हैं, गए नहीं? अब ये ऑफिस आरवी का है, तो अपना सामान समेटिए और अलविदा कहिए अब इस ऑफिस को, क्योंकि आपसे तो ये जिम्मेदारी संभाली नहीं गई, पर अब मेरी वाइफ अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभालने वाली है। एक बार फिर शान ने उन्हें नीचा दिखाया, उनको ताना मारा और बड़ी ही रूड वे में जाने को कह दिया। आरवी सर झुकाए बैठी रही। अमरजीत जी मुस्कुराए और वहां से जाने के लिए मुड़े, तभी उनके कानों में शान की गुस्से भरी आवाज़ पड़ी, इंसान अपने कर्म भूल जाता है, पर भगवान सब देखते हैं और वक्त सबके हिसाब बराबर करता है। देर सवेर ही सही, पर सबके कर्मों का फल उसे इसी धरती पर भुगतना होता है, और उनकी लाठी जब पड़ती है तो आवाज़ नहीं आती, पर सबक सिखा जाती है। ऐसा ही एक दिन था जब आपने मेरे डैड को उनके ही थिएटर से बाहर का रास्ता दिखाया था, और एक आज का दिन है जब आपको आपकी ही बेटी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने मेरे डैड से सब कुछ छीना था, और आज आपको भी बर्बाद आपकी बेटी ने किया है, आपके अपने खून ने, और वही बहुत जल्द आपका असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर आपको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करेगी। और ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है, बस सही वक्त का इंतज़ार है, फिर आपके किए हर गुनाह की सज़ा मिलेगी आपको, और सज़ा देने वाली आपका अपना खून होगा। शान नफ़रत भरी निगाहों से उन्हें घूरने लगा। अर्जुन उसे ही देख रहा था और उसकी चेतावनी और गुस्से को समझ भी रहा था। अमरजीत जी ने खामोशी से उसकी बात सुनी और चुपचाप मुस्कुराकर वहां से बाहर निकल गए। अर्जुन ने आरवी को अपना ध्यान रखने को कहा और वो भी वहां से चला गया। उनके जाते ही शान के चेहरे के भाव बदल गए। वो बैक वॉल के पास आकर खड़ा हो गया और सामने दूर दूर तक फैले समुद्र को देखने लगा। दिमाग पर एक बार फिर उसका अतीत हावी होने लगा था। आरवी कुछ देर सर झुकाए बैठी रही, फिर उठकर शान के पास आ गई। दूसरी तरफ अमरजीत जी अर्जुन के साथ खाली हाथ अपने ऑफिस से निकल गए और उनके एम्प्लॉई उनके उदास चेहरे को देखते रह गए। शान खामोश खड़ा दूर दूर तक फैले समुद्र को देख रहा था, जो एकदम शांत लग रहा था। लहरें खामोश थीं, पर उतनी ही प्रचंड वेग का तूफान उसके मन में उठ रहा था। अचानक ही उसके कानों में आरवी की नाराजगी भरी आवाज़ पड़ी, क्या मिल गया आपको मेरे नाम पर उन्हें जलील करके, वो भी उनकी बेटी के सामने? शान एकदम से अपनी सोच से बाहर आया और आरवी की तरफ पलटकर सख्त निगाहों से उसको देखते हुए बोला, सुकून और बदला, ऐसा ही कभी तुम्हारे बाप ने मेरे डैड के साथ किया था। उनके मेहनत से खड़े किए थिएटर से उन्हें बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम लगाकर धक्के मारकर निकाला था, और आज मैंने उसका बदला पूरा किया है। हाँ, अब भी कमीनेपन में तुम्हारे बाप की बराबरी नहीं कर सका मैं। उन्होंने जैसे मेरे डैड को जलील किया था, उसके सामने मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और इज्जत के साथ उनको और उनके बेटे को बाहर का रास्ता दिखाया है। आज उन्हें एहसास हुआ कि जब कोई अपना आप से आपका सपना और सालों की मेहनत के फल को एक झटके में छीन लेता है तो कैसा महसूस होता है। ऐसा ही उस दिन मेरे डैड को भी महसूस हुआ होगा, और आज तुम्हारे बाप को उनकी तकलीफ का एहसास होगा, और यही चाहता था मैं। इतना कहकर शान कैबिन से बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने अनाउंसमेंट की और सबको बता दिया कि अब से उनका बॉस वो है, और आज से ही उसने काम शुरू कर दिया। उसने अमरजीत जी के असिस्टेंट को बुलाया और उससे सारी अपडेट लेने लगा। आरवी को कुछ आता नहीं था, तो वो बस शान को देख रही थी। सारा दिन उनका यूं ही बीता। रात हुई तो शान ने आरवी को सेफली घर ड्रॉप किया और खुद निकल गया। सुबह से दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। रात यूं ही बीती। शान आज फिर घर नहीं आया था। अगली सुबह अलग सी थी। कल तो जिस कंपनी के शेयर्स के प्राइस जमीन की खाक छान रहे थे, रातों रात उसी कंपनी के शेयर्स के भाव आसमान छूने लगे। शान को करोड़ों का फायदा हुआ। एक्चुअली कंपनी के सिस्टम में कई लूप होल्स थे जिनका फायदा शान ने उठाया था,
और कल का सारा दिन उसने उसी में लगाया था। रुके सभी प्रोजेक्ट वापस शुरू हो चुके थे और टीआरपी हाई जा रही थी। जंगल में लगी आग की तरह ये खबर हर जगह फैल चुकी थी कि ठाकुर एम्पायर को शांतनु मल्होत्रा ने टेक ओवर कर लिया है और इसका भी कंपनी को बहुत फायदा हुआ था। इन्वेस्टर्स एकदम शांत हो गए थे। एक दिन में शान ने सब व्यवस्थित कर दिया था। ये खबर निया तक भी पहुंच चुकी थी और दोनों की इस बात पर अच्छी खासी बहस भी हो गई थी। गुस्से में अर्जुन बाहर निकल गया था और सारी रात बाहर ही रहा। अगली सुबह वो होटल रूम में पड़ा था, तभी उसके डोरबेल बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने सृष्टि खड़ी थी। उसको वहां देखकर अर्जुन की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से कहा, तुम यहां इस वक्त? हाँ मैं, और यहां इस वक्त। इससे ज्यादा कुछ मत पूछिए और जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आइए, हम ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जा रहे हैं, सृष्टि ने इतने हक से कहा कि अर्जुन मना नहीं कर सका। उसने उसको अंदर आकर वेट करने को कहा और खुद अंदर बने बेडरूम में चला गया। सृष्टि घूम घूम कर उस रूम को देखने लगी जिसमें बाहर बड़ा सा लिविंग रूम था, दो बेडरूम, साइड में स्मॉल किचन जहां फ्रिज रखा हुआ था। सब चीज साफ सुथरी थी और डिसेंसी सजावट थी। कुछ देर बाद अर्जुन वहां आया तो सृष्टि को घूम घूम कर सब देखते हुए पाकर बोला, क्या हुआ, इतने ध्यान से क्या देख रही हो? सृष्टि ने आवाज सुनकर पलट कर उसको देखा और फिर आसपास निगाहें घुमाते हुए बोली, रूम काफी अच्छा है, अक्सर यहां आते हैं? कभी कभी, जब अकेले रहने का मन होता है। पैसे तो बहुत लगते होंगे इतने अच्छे और बड़े रूम के? अर्जुन इस सवाल पर कुछ पल चुप रह गया, फिर निगाहें फेरते हुए बोला, इतने पैसे हैं मेरे पास। सृष्टि ने उसका जवाब सुना और एकदम से उसकी तरफ पलट कर बोली, मेरा ये मतलब नहीं था अर्जुन, मैं बस पूछ रही थी कि इतने बड़े होटल में इतना आलीशान रूम का प्राइस भी बहुत होगा। अर्जुन ने बस इतना ही कहा, फिर कुछ सेकंड बाद बोला, चलो चलते हैं। सृष्टि ने सर हिला दिया और दोनों वहां से निकल गए। पार्किंग में पहुंचे तो सृष्टि ने अर्जुन को देखकर कहा, मैं आपके साथ चल सकती हूँ, मतलब मैं आज बाइक नहीं लाई हूँ। बैठो, अर्जुन ने सर हिला दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद दोनों उसी रेस्टोरेंट में थे जहां पहली बार अर्जुन सृष्टि को लेकर गया था। सृष्टि ने फूड ऑर्डर किया, फिर अर्जुन को देखकर बोली, ऑर्डर मैंने किया है, पे आप करेंगे, लड़कियों से बिल के पैसे नहीं लेते। अर्जुन उसकी बात पर फीका सा मुस्कुरा दिया। इसके बाद दोनों के बीच कुछ खास बात नहीं हुई। उनका ऑर्डर आया और सृष्टि ही खाते हुए कुछ कुछ बोलकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती रही, पर अर्जुन की तरफ से हर बार फीका सा रिस्पॉन्स आया।
यूं ही नाश्ता हो गया, वेटर खाली बर्तन लेकर चला गया, पर दोनों अब भी वहीं बैठे थे। अर्जुन कुछ खोया खोया सा लग रहा था, जबकि सृष्टि उसे ही देख रही थी, शायद उसकी उन भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी जो वो बयां करने से कतरा रहा था। कुछ पल खामोशी से अर्जुन को देखती रही, फिर चेयर खिसकाकर उसके पास आ गई और टेबल पर रखी उसकी हथेली को थामते हुए बोली, मुझे सब जानना है अर्जुन। अर्जुन चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आया और सर घुमाकर सवालिया निगाहों से उसको देखते हुए बोला, क्या जानना है, सारी दुनिया सब जानती है, अब तुम क्या जानना चाहती हो? वो जो और कोई नहीं जानता, मैं आपको भी जानती हूँ और शान को भी। शान ऐसा नहीं है, वो कभी किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करता, पर आपके साथ उसने गलत किया है तो ज़रूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। मैंने पहले भी ऑब्जर्व किया है, उसका और भाई का दोनों का बर्ताव आपको लेकर रूखा सा है, बस मुझे यही जानना है कि बात क्या है। अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो जवाब दे दीजिए मेरे सवाल का। अर्जुन कुछ पल उसको देखता रहा, फिर उसने जितनी भी बातें उसको पता थी सब जस की तसु से बता दिया। सृष्टि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया उसकी बातें सुनकर। अर्जुन ने सारी बात बताने के बाद उसके चेहरे के भावों को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ, इसलिए मुझे शान से कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि सच चाहे जो हो पर उसने तकलीफ सही है और उसके साथ गलत हुआ है, जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं डैड है, पर मुझे नहीं लगता कि डैड वो सब कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चिंता मुझे आरवी की हो रही है, क्योंकि इन सब में वो बेवजह फंस गई है। शान ने बिजनेस हमसे छीन लिया, इस बात का रत्ती भर दुख नहीं है मुझे, दुख है तो इस बात का कि वो आरवी को तकलीफ पहुंचा रहा है जबकि वो इनोसेंट है। अगर शान मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले, बस मेरी बहन को खुश रखे, तो मैं खुशी खुशी उसकी मुस्कान पर अपनी जान तक वार दूं, पर तकलीफ इसी बात की है कि वो आरवी को दर्द दे रहा है और मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने तुम्हें सब बता दिया, इससे ज़्यादा मुझे खुद नहीं पता। अब इससे बेसिस पर तुम भी चाहो तो मुझे गलत समझकर नफरत कर सकती हो मुझसे, इस दोस्ती को तोड़ सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। अर्जुन ने अपनी बात साफ साफ शब्दों में उसके सामने रख दी और खामोश हो गया। सृष्टि कुछ पल खामोशी से उसको देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आपकी यही बातें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इतना साफ दिल है आपका तो आपको गलत समझने की गलती मैं भला कैसे कर सकती हूँ। जिंदगी में एक ही तो सही काम किया है मैंने, आपसे दोस्ती की, और अब ये दोस्ती मेरी आखिरी सांस तक यूं ही बनी रहेगी। और एक बात कहनी है मुझे, आप यूं निराश मत होइए, आज हालात भले ही आपके अगेंस्ट हो, पर जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। टू बी कंटिन्यूड।